तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है नूर? नूर के चेहरे का रंग बदल गया। ये कैसा सवाल है? उसने किताब बंद कर दी। मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं। अरमान हल्का सा मुस्कुराया। मतलब तुमने किसी से मोहब्बत नहीं की? नूर ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। अगर नहीं की तो क्या मेरा चांस है? अरमान ने आधे मजाक आधे गंभीर लहजे में कहा। बस यही सुनना बाकी था। नूर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अरमान, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने सख्ती से कहा। अरमान अभी भी उसे देख रहा था। नूर ने बिना कुछ और कहे अपना सामान उठाया और तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गई। वो इस सिलसिले में अरमान से कोई बात नहीं करना चाहती थी। अरमान वहीं बैठा रह गया। उसने गहरी सांस ली। इतनी भी नफरत मत किया करो, उसने धीमे से खुद से कहा। उधर नूर के कदम तेज थे, मगर उसके दिल की धड़कन उससे भी तेज। उसे गुस्सा इसीलिए नहीं आया था कि अरमान ने सवाल पूछा, बल्कि इसीलिए आया था कि ये सवाल उसके अंदर कहीं छिपे डर को छू गया था। क्या सच में उसके दिल में किसी के लिए जगह थी, या वो खुद भी इस सवाल से भाग रही थी? लॉन की रोशनी अब भी जल रही थी, मगर कहानी में एक नई हल्की सी चिंगारी जल चुकी थी। अगली सुबह फरदीन खान के घर के किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही थी। किचन में हल्की हल्की कॉफी और बेकिंग की खुशबू फैली हुई थी। नूर माइक्रोवेव के सामने खड़ी थी। उसने अभी अभी कपकेक्स बनाए थे। वो ओवन का दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर निकालने लगी। ध्यान से नूर, हाथ चल जाएगा, सादिया ने जल्दी से कहा। नूर हल्के से मुस्कुराई और सावधानी से ट्री बाहर निकाल ली। आपको तो सब आता है भाभी, आपने कहाँ से सीखा? नूर ने उत्सुकता से पूछा। सादिया ने ट्री काउंटर पर रखते हुए कहा। नहीं, मैंने कोई बेकिंग कोर्स नहीं किया, मैंने सब कुछ दाई अम्मी से यहीं इस घर में सीखा है। अच्छा, तो फिर मुझे भी सिखा देना भाभी, नूर ने हंसते हुए कहा। हालांकि सादिया के मन में बहुत कुछ चल रहा था, मगर वो अपनी सास और पति की बात मानकर नूर के साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी। दोनों अब धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी होने लगी थीं। उसी वक्त रेहाना बेगम किचन में आई। उन्होंने देखा कि सादिया और नूर दोनों मिलकर काम कर रही हैं। ये देखकर उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। उधर हॉल में सोफे पर रेहान बैठा हुआ था। उसने फैजान को बुलाया हुआ था। हाँ कहिए भाई, आपने मुझे क्यों बुलाया? फैजान ने आकर पूछा। रेहान थोड़ा आगे झुककर बोला। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। काम? फैजान ने हैरानी से पूछा। हाँ, क्या तुम मेरे साथ ऑफिस में काम करोगे? क्या काम? रेहान ने समझाते हुए कहा। असल में मुझे सिक्योरिटी इंचार्ज के लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए जिस पर मुझे पूरा भरोसा हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गोडाउन और ऑफिस के सिक्योरिटी के इंचार्ज बन जाओ। सारे गार्ड तुम्हें रिपोर्ट करेंगे। फैजान चुप होकर सुनता रहा। अच्छी तनख्वाह मिलेगी और काम भी ठीक है, ज्यादा पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है। मुझे बस एक यकीन का आदमी चाहिए, रेहान ने कहा। असल में रेहान का बिजनेस काफी बड़ा और फैला हुआ था, और उसे भरोसेमंद लोगों की जरूरत थी। भाई, आप क्या कह रहे हैं? फैजान ने थोड़ा हैरान होकर कहा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, रेहान ने जवाब दिया। फैजान ने कुछ पल सोचकर कहा। मैं सोचकर बताऊंगा, रेहान ने तुरंत कहा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैं तो कहता हूँ अभी ज्वाइन कर लो। उसी वक्त सादिया वहां आ गई थी। वो रेहान और फैजान की पूरी बात सुन चुकी थी। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फैजान, इसे मिस मत करो। हाँ बोल दो, सादिया ने कहा। फिर उसने थोड़ा तीखे लहजे में जोड़ा। तुम्हारी ग्रेड के हिसाब से तुम्हें और कौन नौकरी देगा? ये तो रेहान है जो चाहते हैं कि तुम उनके साथ काम करो। फैजान को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, मैं सोचकर बताऊंगा, इतना कहकर वो वहां से उठकर चला गया। रेहान और सादिया दोनों उसे जाते हुए देखते रहे, क्योंकि फैजान ने कहा था कि वो सोचकर बताएगा। इसका मतलब था कि वो मना करके सीधा किसी को मना कर सके, इतनी हिम्मत फैजान में नहीं थी। आज छुट्टी का दिन था, इसीलिए ना तो कोई ऑफिस गया था और ना ही कोई कॉलेज। सब लोग घर के लॉन में बैठे हुए थे। हल्की धूप और ठंडी हवा का मौसम बड़ा सुकून दे रहा था। रेहान सोफे पर बैठा था। उसके सामने अरमान और माहिरा बैठे हुए थे, और तीनों किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी सादिया कॉफी के कप लेकर आईं। उसी समय नूर भी किचन से बाहर आई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें छोटे छोटे कपकेक्स रखे हुए थे। ये लीजिए, मैंने सबके लिए कपकेक्स बनाए हैं,
नूर ने मुस्कुराते हुए कहा और ट्रे टेबल पर रख दी। सबकी नजर कुछ पल के लिए उसकी तरफ चली गई। रेहान ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कौन सा फोन चाहिए बता देना, आ जाएगा। वैसे मैं आज मॉल जा रहा हूं, अगर चाहो तो मेरे साथ चलकर अपनी पसंद का ले लेना। नूर हल्के से सिर हिलाया, नहीं, मुझे रेहान भाई फोन ला कर देंगे। इतना कहकर वो थोड़ा आगे बढ़ी और अनजाने में रेहान की कुर्सी के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। शायद किसी और ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर रेहान ने जरूर महसूस किया। अगर जाना हो तो चली जाओ, रेहान ने दोबारा कहा। नूर हल्की मुस्कान के साथ बोली, नहीं, आप अपनी मर्जी का ही दिला दीजिए रेहान भाई। वो इतनी पास खड़ी थी कि उसका दुपट्टा हल्के हल्के रेहान की बाजू को छू रहा था। नूर के जिस्म से आती हल्की खुशबू भी रेहान को साफ महसूस हो रही थी। उधर नूर बेखबर थी, वो अरमान से बातें कर रही थी और हंसते हुए कह रही थी कि वो उसके साथ मॉल नहीं जाएगी, क्योंकि रेहान भाई खुद उसके लिए फोन ले आएंगे। उसकी इस मासूम बात का मतलब साफ था, उसके अब्बा ने उसे रेहान की जिम्मेदारी में छोड़ा था, इसीलिए उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। मगर जिस तरह वो रेहान के पास खड़ी थी, जिस तरह उसका दुपट्टा उसे छू रहा था और जिस भरोसे से वो उसकी बात कर रही थी, रेहान के अंदर जैसे कोई अजीब सा तूफान उठने लगा था। एक ऐसा तूफान जो अगर बाहर आ गया तो शायद बहुत कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगा। फैजान घर लौटा तो सीधे अपने कमरे की तरफ नहीं गया, वो ड्राइंग रूम में बैठी अपनी जुबेदा बेगम के पास गया। चाची जान, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। बेगम ने उसकी तरफ देखा। क्या बात है? फैजान ने हल्का सा सांस लेकर कहा। आज रेहान भाई ने मुझे जो नौकरी का ऑफर दिया था ना, उन्होंने मुझे अपना सिक्योरिटी इंचार्ज बनाने की ऑफर की है। तो तुमने क्या कहा? जुबेदा बेगम ने पूछा। जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा, मैं सोचने के लिए वक्त मांगा है, अब आपके पास आया हूं पूछने के लिए, फैजान ने कहा। अच्छा किया, अब तुम्हें उसे मना कर दो कि तुमसे काम नहीं कर सकते, जुबेदा बेगम तुरंत बोली, वरना तुम्हें रेहान की जी हजूरी करनी पड़ती, दिन रात उससे गुलामी करवाता तुमसे। फैजान ने बस हल्की सी मुस्कान दे दी। वो जानता था कि वेद बेगम कभी नहीं चाहेंगी कि वो घर से बाहर जाकर अपने पैरों पर खड़ा हो। उनकी यही इच्छा थी कि वो यहीं रहे, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी उनके पास है वो चुपचाप उन्हीं के पास रहे। तो अब क्या करने का सोच रहे हो? चाची जान ने पूछा। फैजान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं सोच रहा था मुझे मसूरी जाना है, इसीलिए मैं ये काम भी नहीं करना चाहता। मसूरी? वेद बेगम ने हैरानी से पूछा। घूमने जाना है तो चले जाओ, किसने रोका है? तुम्हारी टिकट भी करवा दूंगी और खर्चे के लिए पैसे भी दे दूंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फैजान ने शांत आवाज में कहा। मैं तो बस आपसे इजाजत मांग रहा था। हाँ हाँ, चले जाना, वेद बेगम ने बेपरवाही से कहा। थोड़ा घूमाओगे तो मन भी बदल जाएगा। वो ये सोचकर खुश हो गई कि फैजान बस कुछ दिन घूमने जा रहा है और फिर वापस आकर उसी घर में रहेगा। मगर वो ये नहीं जानती थी कि फैजान मसूरी घूमने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत करने जा रहा था। घर के किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं था कि फैजान ने चुपचाप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास कर लिया है और अब उसे ट्रेनिंग के लिए जाना था लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, जहां से निकलकर वो एक दिन आईएएस अधिकारी बनने वाला था।
ये राज अभी सिर्फ फैजान और किस्मत को ही पता था, घर में किसी को नहीं। और शायद यही वो राज था जो एक दिन सबकी जिंदगी बदलने वाला था।